ओम शांति। एक हाथ की ताली से आदरणीय शीलू दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। शीलू दीदी जी से सब परिचित हैं? है, कुछ नहीं है। कौन कौन परिचित हैं? अच्छा, सभी। हाँ। तो इनका परिचय तो टीवी से भी, टीवी में भी आप देखते रहते होंगे, डायमंड हॉल में भी आपने क्लासेस की होंगी, और अभी नजदीक से हम शीलू दीदी जी को आज सुनेंगे। निराकारी, अहंकारी, निर्विकारी, इस टॉपिक पर आप हमें क्लास कराएंगे। मैं आपके लिए दो शब्द कहूंगी, आपकी ज्ञान की मीठी टिकलू, आपकी ज्ञान की मीठी टिकलू मिटा देती है माया की फ्लू, मिटा देती है माया की फ्लू। आप बाबा की हर की पौड़ी, आप बाबा की हर की पौड़ी, गहन अनुभूति द्वारा आप पहनाते हम सबको याद की दौड़ी, आप पहनाते हम सबको याद की दौड़ी। कैसे हम अपनी निराकारी स्थिति बनाकर उस दौड़ को आगे बढ़ाएं, अब हमें शीलू दीदी क्लास कराएंगे।
आपने अपना परिचय दिया है, हम शीलू बहन है, ये शीला है, तो शील है,
और वो हमारी गुवाहाटी की शीला बहन, इसलिए क्या सतीश भाई जी ने,
हाँ तीनों ही शीला है,
शीला, शीलू और शील का बहुत अच्छा गीत बनाया था कल, उसे एक लाइन ये भी डाली थी उन्होंने। तो लौकिक शरीर का नाम शील है, और बाबा साकार बाबा के समय से ही हम इस ईश्वरीय ज्ञान में हैं, जब हम वो छोटे छोटे थे। और लास्ट डे जिस दिन हमारी अनुभव की लेन देन होगी, उस दिन मैं भी आपको अपना अनुभव सुनाऊंगी, सिर्फ 15-20 मिनट, आधा घंटा, कैसे बाबा के वरदान से हमारे परिवार का कल्याण हुआ, हमारे लौकिक फादर ज्ञान में चले, वो डिटेल में सुनाऊंगी। तो ज्ञान हमने जयपुर से लिया, और उस समय मम्मा भी थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा की हम लोगों ने ज्यादा पालना ली। 64 में ज्ञान में आए, 69 में बाबा व्यक्त हुए। हर साल बाबा से मिलने के लिए हम आते थे, बाबा की पालना ली, और फिर समर्पित हुए। जब बाबा अव्यक्त हुए, वो कैसे समर्पित हुए, उसकी कहानी बहुत लंबी है, तो वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। अभी हम शीलू देवी जी से सुनेंगे, कैसे बाबा ने मुझे अपना बनाया। ये बाबा की बहुत बड़ी कमाल है, मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी, लेकिन बाबा ने कैसे हिम्मत
करी। होगा ना एक क्लास के
जी,
अपना क्लास।
हाँ, मैंने वो लास्ट में अनुभव साकार बाबा के साथ का वरदान का लिखा है, तो वो जरूर मैं आपको सुनाऊंगी। फिर इसके बाद हम राजस्थान में ही कई स्थानों पर सेवा में रहे, उदयपुर, सीकर, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कई स्थानों पर रहे। अभी पिछले 25 साल से मैं राजस्थान में जोधपुर की सेवाओं में उपस्थित हूँ। ओम शांति।
ओम शांति। आप सभी बहुत 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 भाग्यशाली हो, मधुबन तपोभूमि में, वरदान भूमि में, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि में, परिवर्तन भूमि में योग बट्टी करने आए हो, तो हमारे तरफ से भी आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मधुबन में आना माना अपनी बैटरी चार्ज करना, मधुबन में आना माना सागर के किनारे आना और अब बादल भरना और फिर जाकर के बरसना, बाबा यही कहते थे। सागर के कंठे पर आए हो, पावर हाउस में आए हो, तो यहां से खूब भर के जाना, और भर करके फिर जा करके बांटना। तो इस संस्कार परिवर्तन योग तपस्या भट्टी में आप सभी पधारे हो, एक ही बड़ा लक्ष्य इस भट्टी में आने का है कि जो भी हमारे अंदर छोटे मोटे अशुद्ध या कोई भी प्रकार के ऐसे संस्कार हैं जिनको हम पुराना संस्कार कहते हैं, उनको यहां समाप्त करके जाएं और उसके लिए अपने लिए टाइम दें। परिवार में रहते हैं, गृहस्थी में होते हैं, जिम्मेदारियां बहुत होती है तो अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, लेकिन यहां भट्टी में आप आए हो अपने लिए टाइम देने के लिए। आज भी बाबा ने कहा अपने साथ बातें करो। कई बार वीआईपीस की जब हम कोई प्रोग्राम कराते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट डायरी में कितनों के नाम होंगे। बड़े बड़े लोगों की तो मिनट मिनट की डायरी होती है, मिनट मिनट का प्रोग्राम होता है। आज बाबा ने वरदान में भी यही कहा, लेकिन उस डायरी में दूसरों के नाम होते हैं, इनसे मिलना, ये आएंगे, इनका अपॉइंटमेंट, सारा दिन अपॉइंटमेंट्स होते हैं, लेकिन कभी उस डायरी में आपका अपना नाम भी है? अपना नाम है अपॉइंटमेंट में, अपने साथ अपॉइंटमेंट। तो किसी से मैंने ये पूछा तो उसने कहा हाँ क्यों नहीं, जब हम टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं तो अपने लिए टाइम है। हमने कहा बिल्कुल नहीं, ये आपके शरीर के लिए टाइम है, आपकी आत्मा के लिए टाइम कहाँ है? अपने लिए टाइम आना, अपने शरीर के लिए टाइम, ये अपने लिए टाइम नहीं हुआ, ये आपके शरीर के लिए टाइम है। थोड़ा एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, वॉकिंग करना है, भोजन करना है, ये शरीर को टाइम दे रहे हैं आप, पर अपनी आत्मा को टाइम कब देंगे? तो कहते कभी सोचा ही नहीं कि आत्मा को भी टाइम देना होता है क्या। तो अपनी आत्मा को टाइम देना माना अपने साथ बातें करना। दूसरों से बातें करते तो क्या कहते हैं, बड़े व्यक्ति के पास कोई जाता है तो पूछेगा ना, आपको मैं क्या मदद कर सकता हूँ, आप क्या चाहते हैं, क्या चाहिए? तो वो कहेगा साहब ये काम, ये मदद। तो जैसे उस अपॉइंटमेंट में कुछ ना कुछ कारण होता है, इसी प्रकार अपनी आत्मा के साथ अपॉइंटमेंट माना, आत्मा को क्या चाहिए। आज भी बाबा ने कहा ना, एक है शरीर की पालना, शरीर को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, और आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को क्या चाहिए? शांति, प्रेम, सुख, खुशी, आनंद, शक्ति, जो आत्मा के मूल गुण है वो आत्मा को चाहिए। अब उनसे जैसे वंचित है तो वो कैसे मिलेंगे? अपने आप को पहचान कर, यही कहते हैं ना, वो आपके पास ही है, सिर्फ उसको जगाना है। तो जैसे हम कहते हैं उसको जगाना है, तो इसी प्रकार अपनी आत्मा से बात करना माना अपने गुणों को पहचानना, अपनी शक्तियों को पहचानना, और जो कमियां कमजोरियां हैं उनको भी पहचानना। इसलिए बाबा कहते दूसरों को मत देखो, दूसरे कुछ भी कर रहे हैं वो उनका कर्म, उनका हिसाब किताब, लेकिन मेरा जो कर्म है, मेरा हिसाब किताब, वो मुझे देखना होगा, वो और कोई नहीं देखेगा। इसलिए मुझे क्या करना है ये अपने साथ बातें करो, और जो ये छोटी मोटी कमियां कमजोरियां हैं वो निकालने के लिए आपको ये टाइम मिला है अपने साथ बातें करने लिए। तो मधुबन आना माना अपनी बैटरी को चार्ज करना। और आज जब पहला विषय है आपका निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति, इन तीनों शब्दों में पूरी स्थिति आ जाती है जो ब्रह्मा बाबा की थी। और अंत में यही तीन शब्द बाबा ने उच्चारे 18 जनवरी को रात्रि क्लास बाबा ने कराया। और गुड नाइट, नमस्ते, ओम शांति, ये सब किया। और जैसे बाबा उठे, हिस्ट्री हॉल के दहलीज जो दरवाजा है वहां तक पहुंचे, बाहर निकलने से पहले बाबा फिर अंदर की ओर मुड़े, बच्चे तो सब बैठे ही रहे, और बच्चों के आगे झुके, और झुक करके बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, सदा निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी रहना, अच्छा बच्चों से छुट्टी। बाबा छुट्टी शब्द कभी नहीं कहते थे, कभी नहीं। नमस्ते, गुड नाइट वो तो किया बैठकर, लेकिन खड़े खड़े झुक करके बच्चों से छुट्टी लिए। और बाबा अपने कमरे में गए और वहां 2 मिनट का खेल था, दादी प्रकाशमणि उनके सामने थे, और कैसे दृष्टि और हाथ इनके द्वारा सारी विल, सारी शक्ति हैंड ओवर कर दी दादी प्रकाशमणि जी को, बिना कुछ कहे। सिर्फ वही तीन अंतिम शब्द थे, अंतिम बोल। और सचमुच देखा जाए, उन तीन शब्दों में सारी धारणा का सार है। जब हम कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, क्या करना है मनसा में, निराकारी बनना है, वाचा में निरअहंकारी बनना है, और कर्मणा में निर्विकारी बनना है। तो मनसा वाचा कर्मणा में ये तीन शब्द आ जाते हैं, मनसा में निराकारी, वाचा में निरअहंकारी, और कर्मणा में निर्विकारी। तो मनसा में निराकारी का मतलब क्या है, जो बाबा हमें कहते हैं, बच्चे अशरीरी बनो, देही अभिमानी बनो, विदेही बनो, ये सब निराकारी स्थिति के ही स्वरूप हैं। जब हम ये जान गए कि मैं तो एक आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा परम धाम की निवासी हूं, ये शरीर तो मेरा एक वस्त्र है, मैं तो यहां मेहमान हूं, टेम्पररी हूं, एक्टर हूं, बताते हैं ना सबको। तो जहां से आए हैं वहां हमें वापस जाना है। और आज बाबा ने कहा कि ढिंढोरा पीटो कि बाप उस धाम से आया है हम सबको वापस ले जाने, अभी चलो वापस, अभी चलो वापस घर जाना है। खेल पूरा हो रहा है, नाटक पूरा हो रहा है। तो ये तब अनुभव होगा जब हम निराकारी अवस्था का अनुभव करेंगे। अब निराकारी अवस्था में कई बातें हैं। ब्रह्मा बाबा ने अपने साथ ये पुरुषार्थ किया, बहुत पुरुषार्थ किया, कैसे सबको आत्मा रूप में देखना। बाबा की लौकिक युगल यशोदा थी, बाबा दीवारों पर लिखते थे शुरू शुरू में, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। नहीं तो पत्नी पति का संबंध कितना गहरा होता है, और यहाँ तो सब हद के संबंध खत्म। कहाँ पत्नी पति पत्नी का संबंध और कहाँ बाप बेटी का संबंध हो गया। ब्रह्मा बाबा क्या हो गए यशोदा के लिए, पिता बाबा वो भी बाबा कहने लगी, और बाबा के लिए सब बच्चे, तो यशोदा भी क्या हो गई, क्या हो गई, बच्ची हो गई, बिल्कुल बच्ची हो गई। वो बाबा कहे वो बच्ची कहे, मम्मा और मम्मा की लौकिक माँ यज्ञ में दोनों आए इकट्ठे, समर्पित हो गए। पिता तो गुजर गए और कोई नहीं, पर दोनों आए और बाबा के हो गए, और बच्ची माँ बन गई। बाबा ने मम्मा कहना शुरू किया, कहा मम्मा 18 साल की, बाबा तो 60 साल से भी अधिक, पर सबसे पहले मम्मा ये बाबा ने कहा, और सब ने बाबा को फॉलो किया, मम्मा कहा तो मम्मा की लौकिक माँ ने भी क्या कहा, हाँ तो माँ बेटी बन गई और बेटी माँ बन गई। देखो सब अंतर हो गया। हम लोग भी कभी कभी हंसी में कहते हैं, कैसे बाबा सब दृष्टि बदल देते हैं हम सबकी। जब मुझे याद है 69 में जब पहली पहली ट्रेनिंग हुई थी कुमारियों की, हम उसमें आए थे, तो बाबा ने हम कुमारियों को कम सब कॉलेज से पढ़ के आए थे, शीला बहन उनसे पहले वाली भी थी, वो बहनें जो सेंटर पर रहती थी कुछ साल से उनकी थी, वो 2 मास की ट्रेनिंग थी, पट्टी जैसी ट्रेनिंग थी, उसमें शीला बहन आए थे। तो हम कॉलेज पढ़ते थे, हमारी बैच में आशा बहन, दिल्ली की आशा बहन, आरती बहन, चंद्रिका बहन, ये सब थे, और इनकी जो बच्ची थी उसमें वेदांती बहन, जयंती बहन, वो सब सेंटर पर रहने वाली थी। हम लोग घरों से आए थे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके 69 में, क्योंकि बाबा के अव्यक्त होने के बाद बाबा ने अव्यक्त बाबा ने ये कहा, अब मधुबन में क्या होगा, क्या चलेगा। तो बाबा थे तो सब बाबा के साथ ही थे, बाबा ही सबको बहलाते थे, अभी क्या होगा, बाबा तो साकार में नहीं है। बाबा ने कहा ट्रेनिंग रखो, बठिया रखो। तो मुझे याद है कैसे बाबा ने हम लोगों को, हम कन्याएं थी सभी, तो बाबा ने हमको कहा आप अपने आप को कन्या नहीं समझो, हर एक अपने को जगत माता समझे, आप कन्या नहीं हो, जगत माता हो। तो बाबा ने कन्या को क्या बना दिया, जगत माता बना दिया। फिर उसके बाद माताओं की बट्टी हुई, तो माताओं को बाबा ने कहा कोई भी अपने आप को माता नहीं समझे, आप सब ब्रह्मा कुमारियां हो, सब कुमारी हो गई। तो माताओं को बाबा ने कुमारी बना दिया और कुमारियों को माता बना लिया। देखो ना बहु रूपी है ना भगवान, तो अपने बच्चों को भी जैसे चाहे बनाए। तो शुरू में ऐसे था, तो कैसे सब लौकिक संबंध की तो बांस थी ही नहीं, बिल्कुल नहीं, कितने युगल युगल आए, पर कभी नहीं भासना किसी को आए कि ये पति पत्नी है, ये युगल है। एक सुंदर से उदाहरण विश्व किशोर भाव का था, विश्व किशोर भाव और संतरी दादी युगल थे, लेकिन किसी को रिंचक मात्र भी कोई कोई एक मन संकल्प भी नहीं आया, क्योंकि बिल्कुल न्यारे प्यारे बिल्कुल। तो देह के संबंध तो सब खत्म ही हो गए, तो निराकारी स्थिति किसको कहेंगे, जहां देह और देह के सब संबंध समाप्त। जिसको ही कहा सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज, तो ये भगवान की करामात थी, कैसे सहज रूप से देह भान से मुक्त किया। तो निराकारी स्थिति बनाने के लिए स्टेप्स है ना, तो क्या स्टेप्स है, पहली स्टेप है देही अभिमानी बनना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये दृष्टि में स्मृति में वाणी में, लेकिन मनसा में पहले, तब तो दृष्टि में आएगा। संकल्प में होगा तो वृत्ति में आएगा, दृष्टि में आएगा। अगर देह अभिमान होगा तो ये सब भूल लेंगे। मुझे याद है एक बार बाबा ने मुरली में, ये साकार बाबा की मुरलियों में आता है, बच्चे आप आत्मा आत्मा समझो, तो एक भाई था, अभी भी है, उसने पत्र लिखा बाबा को, बाबा मैं आत्मा ये चाहता हूँ, मैं आत्मा ये करना चाहता हूँ, मैं आत्मा मैं आत्मा। वो एक पेज के पत्र में 100 बार मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा। तो बाबा वो पत्र क्लास में लेकर के आए साकार बाबा, और पत्र आकर के दिखाया, देखो ये बच्चे ने पूरा मुरली को फॉलो किया है। उसकी कितनी महिमा की, मैं आत्मा। तो मैं आत्मा ये कभी भूले नहीं। हम लोग भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं कि नहीं भूलते हैं, भूल जाते हैं, वो देह भान आ जाता है। भले अहंकार नहीं होगा, इसलिए दूसरी स्टेज है निरअहंकारी, परंतु अभिमान भान ना, ये 3 स्टेजेस है उसमें। देह अहंकार तो बहुत बड़ी चीज है, फिर देह अभिमान उनसे थोड़ा हल्का, और तीसरा है देह भान। वो देह भान भी भूले, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, ये हर वक्त प्रैक्टिस हो। और जैसे आज बाबा ने कहा, ये कछुए में भी अकल है, कछुए जैसी अकल भी नहीं है क्या बच्चों में, कि वो दाना खाया जो कुछ खाया और फिर क्या करता है, वो अंग समेट लेता है। तो जब समय मिले बच्चे, फिर देही अभिमानी तो है कर्म में व्यवहार में, आत्मा देखना आत्मा से बात करना आत्मा से सुन रहे, तो क्या होगा, जो भी और विचार है वो सब खत्म हो जाएंगे। देह के संबंध देह के बातें जो भी एक बांस की तरह है, बांस आती है ना, वो सब खत्म हो जाएंगे। एक शुद्धता आएगी व्यवहार में, शुद्धता। तो वो देही अभिमानी स्थिति, तो थोड़ा और आगे आओ तो देही अभिमानी स्थिति और फिर विदेही स्थिति। और विदेही स्थिति के लिए बाबा किसको किसका नाम लेते हैं, कौन थे विदेही राजा, हा? राजा जनक विदेही राजा कहलाते थे। विदेही राजा का मतलब, और एक सेकंड में उसको जीवन मुक्ति मिली, तो एक आज भी बाबा ने कहा सेकंड में जीवन मुक्ति, यही तो बाबा की कमाल है, क्या बड़ी करामात है जो एक सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। तो जीवन मुक्ति का मतलब क्या, एक सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे होती है, सेकंड में जीवन मुक्ति का मतलब, यही तो अष्टावक्र से राजा जनक ने पूछा, मुझे सेकंड में जीवन मुक्ति चाहिए। कई विद्वानों से पूछा लेकिन कोई भी विद्वान उनको जवाब नहीं दे सका, तो लास्ट में अष्टावक्र को गुरु बनाया। वो उसका बेढंगा शरीर था, लेकिन उसने जो जवाब दिया उससे वो संतुष्ट हो गया और उसको गुरु बना लिया। और क्या दिया जवाब अष्टावक्र ने, सेकंड में जीवन मुक्ति माना, वो घोड़े पर चढ़ रहा था, राजा घोड़े पर चढ़ रहा था, तो उसका एक पैर घोड़े पर था एक पैर धरती पर था। तो अष्टावक्र ने उनसे पूछा, अभी आप कहाँ हो कहाँ हो, तो वो कहाँ हूँ, घोड़े पर हूँ या धरती पर हूँ, क्योंकि घोड़े पर एक पैर था दूसरा पैर धरती पर था, तो कहाँ हो, तो कहा घोड़े पर हूँ, तो कहा घोड़े पर तो एक पैर तो धरती पर है, तो धरती पर हूँ पर घोड़े पर भी हूँ, तो दोनों पर हो और दोनों पर नहीं हो, ये है जीवन मुक्ति, समझा, है और नहीं है, ये सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, ये है जीवन में मुक्ति। जीवन है, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फंसे हुए कहीं भी नहीं है। और उसको समझ में आ गई बात, राजा जनक को जीवन मुक्ति सेकंड में, एक सेकंड में नहीं आ रही, ये है सेकंड में जीवन मुक्ति। और फिर उसके ऊपर कहानियां बताते हैं ना, कि राजा जनक के पास एक सन्यासी आया और उससे पूछा कि आप इतना अपने बड़े महल में रहते हो तो इतने बड़े महल में आप रहते, आपका इसमें कोई मोह नहीं है, तो क्या है आपकी पास वो युक्ति, आप कैसे इतने बड़े महल में रहते हुए भी आपको मोह नहीं है? क्योंकि वो है सेकंड में जीवन मुक्ति। इतने बड़े महल में देवताओं के पास कोई कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो नष्ट हुआ होंगे या मोह होगा? जैसे कलयुगी दुनिया में मनुष्यों को मोह है, सब कुछ होते हुए भी इच्छा मात्रम अविद्या, ये तो बहुत, ये भी ऊंची बात है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी कहीं भी मोह नहीं, कहीं भी फंसे हुए नहीं है। जिसको कहा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, लेकिन वो सेकंड में जीवन मुक्ति है, जीवन में है और दुख रोग शोक अशांति विकार सबसे मुक्त है, तो उसका क्या राज है? तो सन्यासी ने उनसे पूछा, तो सन्यासी को उसने क्या कहा, ये दिया ले लो, और दिया लेकर के आप पूरा महल का कहानी सुनिए ना, अवलोकन करके आओ, और अवलोकन तो करो, बहुत सुंदर महल है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि दिया बुझे नहीं, है ना, सुनी ना कहानी। अब सन्यासी गया देखने सारा महल, वो दिया था उस समय तो लाइट वाइट तो क्या होगी, ट्यूबलाइट तो नहीं होगी ना, दिए का ही सारा कुछ तो होगा, तो दिया लेकर के गया। अब ध्यान तो पूरा दिए पर था, दिया बुझे नहीं, दिया बुझे नहीं, तो ऐसे देखा लेकिन ध्यान दिए पर। तो जब वापस आया तो राजा ने पूछा, महल देखा? तो कहा देखा जरूर, लेकिन ध्यान तो दिए पर था। इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। सब कुछ है, सब है, सुंदर महल है, पर इसका पर ध्यान कहाँ है? दिए पर। इसकी बहुत कहानियां आती है, बहुत राजा जनक की बड़ी कहानियां हैं, मैंने बहुत पढ़ी है, बहुत पढ़ती थी। एक बार मेरे को किसी ने किताब दी थी इसकी। एक दूसरी कहानी आती है कि राजा जनक, ये उसको ये ज्ञान कैसे हुआ सेकंड में जीवन मुक्ति, ये क्यों मांगी उसने? तो मिसाल देते हैं कि एक दिन वो सोया हुआ था और उसको एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने क्या देखा कि किसी और राजा ने उनके राज्य पर चढ़ाई की और चढ़ाई करके उसका राज्य जीत लिया, छीन लिया, और उसी समय उसके सिपाही आकर राजा जनक को बंदी बना करके उस राजा के पास ले गए, क्योंकि राज्य जीत लिया। उस समय तो यही होता था ना, छोटे छोटे रजवाड़े थे, एक राज्य दूसरे पर राज्य करे, ऐसा ही होता था, लड़ते थे, तो छीन लिया, जीत लिया उसको। तो वो राजा जनक बंदी बन के उसके पास गया, तो राजा, उस राजा ने राजा जनक से कहा कि अभी तो आपका राज्य खत्म, मैं इसका राजा हूं, आपके साथ मैं कैसा व्यवहार करूं? तो राजा जनक ने कहा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, राज्य आप ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहा कि आपके साथ मैं व्यवहार कैसे करूं? तो उसने कहा, बस मैं सन्यासी बन जाऊंगा, सन्यासी, बस मुझे छोड़ दो जंगल में, मैं वहां जा करके सन्यास धारण करके जंगल में रहूंगा, सब आप ले लो। तो सब स्वप्न में देख रहा है, तो उसको लेके गया कोई एक सिपाही और उसको रास्ते में भूख लगी, तो सिपाही को कहता है कि भूख लगी है, हमें कुछ थोड़ा कुछ खाने को, पता नहीं जंगल में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो सिपाही ने थोड़ा उसके पास जो रोटी घर से लाया होगा वो थोड़ा सा इसको दिया, और जैसे ही मुख पर रखने ही जा रहा था, रखा भी नहीं था यहाँ तक, तो एक चील आकाश से उड़ता हुआ आया, है ना, ईगल चील, और ऐसे उड़ करके नीचे आके उसके हाथ पर झपटा मारा वो रोटी लेने के लिए, और उसी वक्त उसकी आंख खुल गई। तो आंख खुल गई तो देखता है कि न मेरी राजाई गई है और न ही मैं जंगल में जा रहा हूँ, न ही मुझे भूख लगी है, मैं तो अपने शैया पर सोया हुआ हूँ, बड़ा सुंदर महल है, तो कुछ भी नहीं गया। तब उसके मन में आया कि आखिर सत्य क्या है, सत्य क्या है, ये जो स्वप्न देखा वो सत्य या ये जो मैं देख रहा हूँ वो सत्य, सत्य क्या है? और उसके लिए फिर कई पंडित विद्वान बुलाए, पर उसने उसको मना, उसको पसंद नहीं आया उनके जो भी वो सुनाते थे उत्तर। फिर अष्टावकर वही उनके सामने आया, उनका गुरु, तो उसने पूछा कि सत्य क्या है। तब उसको अष्टावकर ने कहा, राजन वो जो तुमने देखा ना स्वप्न में, वो सत्य नहीं था। तो फिर क्या? तो कहा, या ये सत्य है? तो कहा, ये भी सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि विनाशी है। आज ये महल है, कल टूट सकता है, आग जला सकती है, उससे खत्म भी हो सकता है, तो ये सत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? तो कहा, सत्य वो है जिसने दोनों का अनुभव किया। स्वप्न का भी अनुभव किसने किया? किसने किया? मैं। तो मैं कौन? और ये भी अनुभव कौन कर रहा है? तो मैं कौन? फिर वहां उसको आत्मा का ज्ञान दिया। तो आत्मा का ज्ञान माना, इसलिए गीता के अंदर भी जो दूसरा अध्याय है वो आत्मा का ज्ञान है, सारा ही आत्मा का ज्ञान, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। तो बाकी जो कुछ है वो परिवर्तनशील है, वो सब असत्य है। अध्यात्म की भाषा में जो परिवर्तनशील चीज है वो सब असत्य है। और कौन है जो परिवर्तनशील नहीं है? जो इस शरीर से पहले भी थी, शरीर के बाद भी रहेगी, वो मैं आत्मा हूं, है ना? तो इसीलिए मैं आत्मा हूं, ये आत्मा का ज्ञान। और फिर विदेही स्थिति का जो ज्ञान है और नहीं है, ये महल में है और ये महल मेरा नहीं है, तो यही उसको ज्ञान दिया। सब कुछ है लेकिन ध्यान किस पर है? ध्यान किस पर है? दीपक पर, माना आत्मा पर। आत्मा पर दाग न लगे, है ना? हम बताते हैं ना, इसीलिए कहते हैं, धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। क्यों सब कुछ गया? क्योंकि वो आत्मा पर दाग लग जाता है, और वो आत्मा पर दाग लगा तो वो चलेगा साथ में। स्वास्थ्य गया, चलो कोई बीमारी आई, ऑपरेशन किया, वो दाग शरीर पर लगा, चलो वो दाग रह भी जाए, मान लो न भी जाए, पर फिर नया चोला मिलेगा, शरीर मिलेगा, तो वो दाग थोड़ी होगा उस नए शरीर में, वो दाग तो गया ना। लेकिन अगर आत्मा पर दाग लग गया तो फिर वो दाग तो चलेगा ना साथ में। इसलिए चरित्र गया तो सब कुछ गया। इसलिए हम लोग जो चित्र बनाते हैं ना, उसमें नीचे और एक लाइन और ऐड कर देते हैं, चरित्र गया तो सब कुछ गया, एक जन्म के लिए नहीं गया, जन्म जन्म के लिए गया, क्योंकि वही संस्कार आत्मा ले जाएगी ना, जो उस जन्म में उसने बनाए। और बाबा हमें क्या कहते हैं? बच्चे अपने अनादि स्वरूप में आ जाओ। आप अनादि स्वरूप में क्या थे, वही आपका असली संस्कार है, वापस पहचानो अपने आप को। ये दाग कैसे मिटेंगे? कई बार बाबा कहते हैं लक्ष्य सोप से, तो लक्ष्य सोप कौन सा है? साबुन से दाग मिटाते हैं ना। तो इसलिए भाई शरीर की बात नहीं है, यह आत्मा की बात है। तभी तो ग्रंथ में बाबा मुरली में कहते हैं, मूत पलीती कपड़ धोए, तो कपड़ा है मूत पलीती, पर वो आत्मा पतित बनी है। शरीर को तो वो साबुन से धो सकते हैं, पर आत्मा को कौन से साबुन से धोएंगे? कैसे बनेगी शुद्ध? लक्ष्य साबुन। कौन सा लक्ष्य? जो बाबा कहते हैं मेरा अनादि स्वरूप। जो बाबा पांच स्वरूपों की बात सुनाते, ये भी आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसी का ही अनुभव है ना। पांच स्वरूप, अनादि स्वरूप में मैं आत्मा कैसी थी, फिर आदि स्वरूप में आई, देवता स्वरूप में आई तो कैसी थी, फिर मध्य में कोई भगत स्वरूप नहीं, मध्य का मतलब है पूज्य स्वरूप, जैसे हमारी पूजा होती है भक्ति मार्ग में, वो पूज्य स्वरूप, यानी कि मैं ही भक्त बनी तो मेरा भक्त का स्वरूप नहीं, भक्त तो विकारी होगा, पर पूज्य स्वरूप फिर संगम पर आई तो ब्राह्मण स्वरूप, फिर बनेंगे फरिश्ता स्वरूप, फिर वापस वही आत्मा का स्वरूप। अब ये पांचों ही स्वरूप वास्तव में देखा जाए, ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। चाहे सृष्टि मंच पर भी हम आते हैं, निराकारी भी है साकारी भी है, लेकिन ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। आज तो देखो बाबा ने आदि सनातन देवी देवता धर्म से पहले किसका किसका माने, ब्राह्मण, ब्राह्मण देवता। हमेशा जब भी लौकिक में भी ब्राह्मण को मिलते थे ना, ये कहेंगे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण केवल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्राह्मण देवता, क्योंकि ब्राह्मण निश्चित है देवता बनेगा, और वो ब्राह्मण तो धर्म प्रायलोप हो गया है। कल भी बाबा ने कहा, आप बोलेंगे हम ब्राह्मण हैं तो भी आपको हिंदू की लिस्ट में डाल देंगे है ना। वास्तव में हिंदू तो स्थान के नाम से बना ना, कोई धर्म के नाम से तो नहीं है। और ब्राह्मण माना सचमुच वो धर्म है। धर्म कैसा, ब्राह्मण किसको कहेंगे, जिसमें ब्रह्म ज्ञान हो। ब्राह्मण किसको कहेंगे, जिसन भी बाबा ने कहा, जो पढ़ता और पढ़ाता हो, ज्ञान होगा तो पढ़ेगा भी और पढ़ाएगा भी, वो ब्राह्मण होता है। जिसने ब्रह्म ज्ञान वास्तव में है ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मा भोजन, ब्रह्म भोज कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त वो, तो ये ब्रह्मा से संबंध है, ब्रह्मचर्य। तो फिर बाबा कहते ब्रह्माचार्य, जो ब्रह्मा ने आचरण किया वो अपने अंदर धारण हो। तो इसीलिए ब्रह्मा के साथ सब शब्द हैं, है ना, ब्रह्मा। फिर वो ब्रह्म और ब्रह्म को जोड़ दिया है, कहां ब्रह्म महतत्व और कहां ब्रह्मा जो माध्यम शिव बाबा का। और फिर बाबा कई बार कहते हैं श्री कृष्ण ब्रह्मा और शिव तीनों को मिला दिया, अभी चौथा पे ब्रह्म को भी जोड़ दिया, सब मिक्स कर दिया। इसीलिए इतने मूंझे हुए हैं जो बात मत पूछो। और ये सब किसने कराया, आज बाबा ने किसको दोष दिया, हा? माया रावण को कैसे सबको गिराया, भगवान से भी दूर किया, खुद से भी दूर किया। तो देखो बाबा आकर पूरा ज्ञान देते हैं। तो वो निराकारी स्टेज, ये मेरा अनादि स्वरूप है। फिर साकारी में भी आए तो भी मेरा दैवी स्वरूप है, पूज्य स्वरूप है, ब्राह्मण स्वरूप है। फिर आकारी स्वरूप, फिर निराकारी स्वरूप, ये सब निराकारी स्थिति के अंतर्गत आएगा। तो वो इतना ऊंचा जो हमारा स्वमान है, उस स्वमान तक पहुंचना, ये है निराकारी स्थिति। तो मनसा में निराकारी स्थिति। तो जब भी कोई कुछ बात आए, याद करो मैं कौन, मैं कौन। तो मैं कौन जैसे ही सोचा तो अपना अनादि आदि स्वरूप, श्रेष्ठ स्वरूप, सनातनी स्वरूप, चाहे साकार हो चाहे निराकार हो, वो याद आ जाएगा और वापस उसका अनुभव कर सकेंगे। तो इसलिए ये मनसा में बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करो, इसी से ही ज्ञान गुण शक्तियां ये सब अंदर ही अंदर विकसित होगी। फिर जैसे वाचा में आओ तो वाचा में कैसी स्थिति हो, निरहंकारी, निरहंकारी स्थिति में बहुत गहराई है। हमारे बोल कैसे हो, जो मुख से बोल निकल रही हैं वो कैसे बोलो। दुनिया में तो देखो कैसे बोल होते, मैं करते रहते हैं सारा दिन। किसी ने एक स्टैटिस्टिक्स निकाली कि डिक्शनरी में जितने भी शब्द हैं, शब्द कोश में, डिक्शनरी में, इंग्लिश में ये बात थी, तो सबसे ज्यादा उच्चारा हुआ शब्द सारी दिनचर्या में जो हम शब्द बोलते हैं, सबसे ज्यादा उच्चारा हुआ शब्द कौन सा है, आई, आई माना मैं। तो देखो, और वो आई कौन सा होता है, मैं कौन सा, मैं ऐसा, 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 सारा दिन मैं की रट लगी रहती है अभिमान वश। या कई बार हम कहते हैं दो प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटीज है, एक है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो अभिमान के वश हम मैं कहते हैं ना, मैं सेठ हूँ, मैं साहूकार हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं चार बेटों का बाप हूँ, ये भी अभिमान है चार बेटों का बाप हूँ, तो जिसके ज्यादा बेटे उतना अभिमान ज्यादा, पर वही बेटे अंत में काम नहीं आते हैं, कौन काम आता है, बेटियां ही काम आती है इस पर कितनी कहानियां बन गई है, आखिर तो बेटियां काम आती है, पर अभिमान किसका होता है, बेटी का अभिमान होता है क्या, बाप को किसका अभिमान होता है, बेटे का अभिमान, मेरे चार बेटे हैं। तो देखो तो बाबा हमें क्या कहते हैं, ये मैं जो हमारा सारा दिन चलता, अभी उस मैं को मारो। और दूसरा मैं कौन सा होता है, एकदम इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं तो कोई काम का नहीं हूँ, मैं तो निकम्मा हूँ, मेरे अंदर तो कोई कला है ही नहीं, कई ऐसे इतना हीन अपने आप को समझते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कई ऐसे कहते सारा दिन मुख से, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो भक्ति में तो पूरा ही है। देखो भगवान के आगे क्या जाकर कहते थे, मैं मूर्ख खल कामी पापी क्या क्या और, तो निर्बल मिट्टी धूल पता नहीं, ये भी अपने आप को कह देते थे। तो मैं को इतना नीचे, और दुनिया में आओ तो मैं को पता नहीं कहाँ चढ़ा दिया। तो किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियों में ये बात को कैसे उसको पॉजिटिव लेना है मैं, तो बड़ा सुंदर इंग्लिश में कहा है, आई एम not everything but I am also not nothing, I am something which can do everything। समझ गए, इंग्लिश समझा, अभी हिंदी में समझाना मुश्किल है। मैं सब कुछ नहीं हूं, पर यह भी नहीं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ हूं जो सब कुछ कर सकता हूं, समझा क्या है इसका मतलब। मैं सब कुछ नहीं हूं, माना इतना अभिमान भी नहीं रखना कि मैं सब कुछ हूं, कोई कह ना मैं सबको जानता हूं, सबको जानता हूं, कितना बड़ा अभिमान है ये, कितना बड़ा अभिमान है ये, सबको जानते हैं क्या, नहीं दुनिया में लगा पड़ा है, भगवान के आगे तो हम फिर भी चलो वो रूप ना हो, पर बाबा ने हमें इतना ज्ञान दिया, त्रिकाल दर्शी त्रिकाल त्रिलोकी नाथ बनाया, पर मैं सब कुछ हूं इतना बड़ा अभिमान हम नहीं रख सकते, कई बातों को हमें स्वीकार करना पड़ता है ड्रामा में जो निश्चित है। कई लोग कहते मैं क्यों नहीं ये कर सकता, क्यों नहीं कर सकता हूं, एक्सेप्ट करो, पर जो है उसको स्वीकार भी करो। कई बार बाबा कहते हैं दिमाग मत लड़ाओ ज्यादा, छोड़ो बाबा को दे दो, कई होते ना नहीं मैं हठीले होते बहुत हठीले जिद्दी, वो भी नहीं बनो, बाबा को सौंप दो, बाबा अब आप करो। कई बार बच्चे कहते हैं बाबा मैं करूंगा, बाबा कहीं करो, छोड़ देते बाबा, बाबा को जिम्मेदारी दो ना, पर देते नहीं है मैं, बाबा को जिम्मेदारी दो। शास्त्रों में इसकी बहुत कहानियां हैं, एक कहानी एक मिसाल महाभारत की बात है, महाभारत में जो कुछ दिखाया है ना, कौरवों ने क्या छल किया क्या किया सब कुछ, पर कृष्ण ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, वो देखता रहा ये क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, और न मदद की, जबकि मदद कर सकता था ना श्री कृष्ण, कर सकता था, उनका ही तो था, लेकिन वो हारते गए, आखिर द्रौपदी को दाव में रख दिया, और द्रौपदी को भी जैसे हरा दिया, और फिर तो दुशासन दुर्योधन ने जो कुछ किया, और उस समय द्रौपदी ने पुकारा कृष्ण को, और भगवान भाई उसने मदद की। तो बाद की बात है कि कृष्ण से पूछा गया कि आप तो मित्र थे पांडवों के, आपने उनको मदद क्यों नहीं की? तो पता है क्या जवाब दिया? मदद मांगी ही नहीं। मदद मांगते तो देता ना, मांगी ही नहीं। फिर द्रौपदी को क्यों मदद की? द्रौपदी ने मदद मांगी। अपनी हिम्मत उसकी पूरी हो गई थी, अपनी हिम्मत तो बहुत रखी, चिल्लाई क्या नहीं किया, दिखाते ना बहुत कुछ किया, लेकिन आखिर में जब और कहीं कहीं नहीं चला तो मदद मांगी और उसी समय मदद मिल गई। उन्होंने मांगी नहीं तो अभिमान तो हो गए ना उन्हों के अंदर, और अभिमान के वश हारते गए और वो चलाक थे शकुनी, क्या क्या कहानियां बताते हैं। तो कई बार बाबा कहते हैं ये कभी मैं समझो मैं सब कुछ हूँ, बाबा मददगार इसलिए हूँ। कई एक मिसाल देते हैं कि पिता ने बच्चे को कहा बेटा मेरा हाथ पकड़ो, कहीं आप गुम न हो जाओ। तो बच्चा कहता है नहीं पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं अगर पकड़ूंगा तो छूट भी जाएगा और आप पकड़ोगे तो कभी नहीं छोड़ोगे। आप पकड़ोगे मना पिता पकड़ेगा तो पूरे पिता छोड़ेगा, पर बच्चा पकड़ेगा तो छूट भी सकता है क्योंकि पिता तो सर्वशक्तिवान है ना। तो इसीलिए क्यों बाबा कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि हर वक्त साथ रखो। ये साथ रखना यही वास्तव में सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब ही क्या है? सदा हमारे साथ है, पर वो भावनात्मक स्थिति खत्म हो गई और उसकी बजाय केवल एक सिद्धांत बन गया, साथ है। तो अभिमान वश मैं सब कुछ हूं तो बाबा कहते हैं मैं को मारो, दूसरी तरफ भी मैं कुछ नहीं हूं ये भी मारो, तो मैं कौन हूं। तो जब कहते आत्मा हूं तो ये मैं हूं। कैसी आत्मा हूं? ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, वो मैं हूं। मैं सेठ हूं, मैं साहूकार हूं नहीं, मैं मूर्ख कामी पापी नहीं, मैं कौन? मैं आत्मा। ये निराकारी स्थिति, फिर उसके साथ निरंकारी स्थिति माना जो बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं वो मैं हूं। मैं मास्टर ज्ञान सागर हूं, मास्टर शांति सागर हूं, मास्टर प्रेम सागर हूं। ये डिग्रियों का भले मान रखो, पर मैं MBA हूं, मैं ये फलाना हूं, वो डिग्रियों का कितना मान होता है, कितना अभिमान होता है। हमारे यहाँ एक संत सम्मेलन हुआ था, उस संत सम्मेलन में कई महामंडलेश्वरों को बुलाया था, कई महात्माएं, पर एक एक महात्मा का अभिमान देखो तो बात मत पूछो। अब इतने सारे आ गए और हर एक सोचे मैं फर्स्ट लाइन में बैठूं, सेकंड लाइन में जाना अपमान समझते थे, अब फर्स्ट लाइन में सबको कैसे बिठा सकते, स्टेज तो छोटी होती है ना। तो आखिर जगदीश भाई को लगा, जगदीश भाई थे तब, तो इतने सब महामंडलेश्वरों को बुलाया तो सबको इक्वल सम्मान कैसे दे सकते हैं। तो फिर क्या किया, स्टेज को बढ़ा दिया, वो लास्ट दरवाजे तक स्टेज कर दी ताकि सब एक ही लाइन में बैठे। चलो वो तो मान मिल गया, उनको एक ही लाइन में बिठाया, लेकिन फिर दूसरा क्या, उनकी जो बायोडाटा थी ना, अब उसमें समझो कितना बायोडाटा सुना देंगे कि कितनी डिग्रियां, अब एक दो सुनाई तो उनको वो नाराज हो जाएंगे, एक दो कैसे सुना सकते, सारा पढ़ के सुनाना। एक तो इतना नाराज हो गया कि मेरा सब क्यों नहीं सुनाया, अब कहा वो उसी में ही तो टाइम चला जाएगा, फिर भाषण क्या करेंगे, और भाषण भी करेंगे तो उनको रोकना नहीं है, पूरा उनको 2 घंटा चाहिए भाषण, अभी एक ही करेगा तो बाकी क्या करेंगे। पर इतना अभिमान, आप सोचो। और बाबा हमको क्या कहते हैं, क्या करो, गुप्त भी रहो, तुम बच्चे बहुत गुप्त हो, यू आर अननोन बट वेरी वेल नोन। ये जब बाबा कहते हैं इसका मतलब क्या है, अननोन, दुनिया अभी नहीं जानती हम लोगों को कि हम वही पांडव हैं, हम वही शिव शक्तियां हैं, ये सब हमारा ही यादगार है क्योंकि अभी गुप्त है। लेकिन हमको अंदर ही अंदर नशा है कि ये सब किसका यादगार है, हमारा। बाबा ने एक बार मिसाल दिया था, अगर महात्मा गांधी की आत्मा हो, महात्मा गांधी की आत्मा किसी जन्म में तो होगी ना अभी, और जिस दिन 2 अक्टूबर या 30 जनवरी महात्मा गांधी का जन्मदिन पुण्यतिथि दिन और वो मनाया जा रहा हो और वो आत्मा भी उस सभा में बैठी हो, अभी दूसरे जन्म में होगी ना, तो और उसको अगर ये पता हो कि ये मेरा ही कर रहे हैं, मेरा ही जन्मदिन मना रहे हैं, ये मेरा ही उत्सव मना रहे हैं, तो उसको कितनी खुशी होगी, ये मेरा ही है। लेकिन उस बिचारे को तो नहीं पता चलेगा ना, दूसरा जन्म हो गया, भले महात्मा गांधी का वो फोटो कहीं भी हो, हर एक नोट पर, आपके पैसे पर भी महात्मा गांधी का फोटो है, पर वो आत्मा को थोड़ी पता है। और हम लोगों को बाबा ने वो ज्ञान दे दिया, ये सब त्योहार किसकी यादगार है, हमारी। लेकिन हम गुप्त हैं, अननोन, दुनिया नहीं जानती, बट वेरी वेल नोन, क्योंकि सारी दुनिया जानती है उनको, पर वो अभी प्रैक्टिकल में गुप्त रूप में है, ये कोई नहीं जानती। इसलिए देखो महाभारत में 1 साल पांडवों का अज्ञातवास दिखाया है, अज्ञात, और अज्ञातवास का मतलब कहीं भी प्रकट न हो कि ये वही पांडव है, भले कर्म वही दिखाएंगे, शक पड़ेगा, लेकिन अज्ञातवास, क्योंकि रूप बदल गया, तो वही बाबा कहते हैं। पर इतना ही निरहंकारी हो और उतना ही स्वमान हो। कई लोग पूछते हैं कि स्वमान और अभिमान में कैसे पता चले ये स्वमान है या अभिमान है, वो डिफ्रेंसिएशन क्या है, वो डिमार्केशन लाइन कहाँ है। जैसे कई पूछते हैं पाप और पुण्य दोनों के बीच में वो डिफरेंस कहाँ है, कैसे पता चले ये पाप है या पुण्य है। अब कोई बोलेगा झूठ बोलना पाप है, इसका मतलब सच बोलना पुण्य है, पर कई ऐसे प्रसंग आएंगे जहां सच बोलना पाप बन सकता है। कैसे कैसे सच बोलना पाप बन सकता है जी, बन सकता है सच बोलना पाप, कैसे जी जी, कौन बोल रहा है? हाँ, बताते हैं ना कि कहानी, शास्त्रों में कहानी है कि एक व्यक्ति रास्ते पर खड़ा था और एक कसाई आया, मतलब एक गाय आई, और वो गाय यहाँ से मेरे से गुजर के इस तरफ चली गई और मैं देख रहा हूँ, और एक कसाई आया हाथ में छुरा लेकर के, उस कसाई, वो कसाई वध कर रहा था गाय का, और वो भाग गई उससे छुड़ा, मतलब पीछा छुड़ा कर, और वो कसाई पीछे पीछे आया। अब वो मेरे से पूछता है वो गाय किस तरफ गई, अब मैं क्या सच बताऊं झूठ बताऊं? अगर मैं कहती हूँ मुझे नहीं मालूम, पर मालूम तो है ना, देखा ना इस तरफ गई, तो सच बताऊं या झूठ बताऊं? अगर मैं कहती हूँ मैं नहीं जानती, ये भी तो झूठ हुआ ना कि सच हुआ। हाँ, ये कह सकते मैं नहीं बताऊंगा, इसमें क्या है, हाँ भले ये सच होगा, परंतु अगर झूठ बताएं तो कम से कम वो गाय का तो उद्धार हो जाएगा, कम से कम छूट तो जाएगी। यानी कहने का भाव है, सच बोलना झूठ बोलना पाप किसको कहेंगे, पुण्य किसको कहेंगे, तो डिमार्केशन लाइन कहाँ है, कहाँ झूठ और सच का वो लकीर खींच सकती है। तो इसीलिए बहुत सुंदर कहा गया है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल क्या, अभिमान। पाप का मूल अभिमान है, जो भी कर्म अभिमान से किया ना वो पाप के खाते में जाएगा, ये है पाप। कोई कहेगा भाई हत्या करना पाप है, पर जो हमारे सिपाही सरहद पर जो शत्रु है उनका सामना कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, आतंकवादियों को मार रहे हैं, और अगर ऐसी शूरवीरता दिखाई तो उनको तो राष्ट्रपति क्या इनाम देता है यार, वीर चक्र, परम वीर चक्र, क्या क्या। और वैसे किसी ने किसकी हत्या की तो उसको फांसी मिल सकती है, हत्या तो दोनों ने की ना, पर उसको वीर चक्र, परम वीर चक्र और क्या क्या सम्मान मिलता है, क्योंकि आतंकवादियों को मारा पर की तो हत्या ना। पर समय, स्थान, परिस्थिति, इन सब के आधार पर वो कर्म का जो फल है वो बदल जाता है। इसलिए कहते कर्म की गति बड़ी न्यारी है, कर्म की गति समझना बहुत मुश्किल है, पर एक सूक्ष्म लकीर है दोनों के बीच में, और वो कौन सी है, अभिमान, मैं। तो अभिमान और स्वमान वो भी मैं है, पर दोनों के बीच में क्या सूक्ष्मता है, क्या सूक्ष्मता है, जो भी भौतिक उपलब्धियों के आधार पर जो मैं होता है ना, ये अभिमान पाप है। मैं तो सुबह से लेकर रात्रि तक जो भौतिक उपलब्धियों का घमंड का जो मैं है वो पाप के खाते में जाएगा। और स्वमान कौन सा है, जो आत्मा का मान है। अब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, कोई मुझे कितना भी अशांत करे, गालियां दे, कुछ भी बोलते हैं, किसको आप रोक सकते हो, किसी का मुंह तो आप बंद नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, ऐसे मुझे क्यों बोल रहे हो, बोलूंगा, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। और वैसे भी हम कहेंगे भारत फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबके लिए बोलते हैं, प्रधानमंत्री के लिए बोलते हैं, सबके लिए बोलते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। अरे की अपनी सोच है, आप किसको भी रोक तो सकते नहीं, तो फ्रीडम है, मीडिया का भी फ्रीडम है, उसको बोलो मीडिया को ये मत छापो, कहेगा छापूंगा, तुम कौन होते हो रोकने वाले। तो स्वमान किसको हम कहेंगे, स्वमान माना आत्मा का मान, कि चाहे उसने कुछ भी कहा लेकिन मैं आत्मा अपने स्वमान में हूं। क्या स्वमान, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे मुझे अशांत नहीं कर सकता है, ये मेरा स्वमान है, मैं अशांत नहीं होऊंगा, ये मेरा स्वमान है, ये मेरा धर्म है। धर्म माना क्या, धर्म पर ये धर्म न छोड़िए, भले मर जाए पर प्राण जाए पर प्रण न जाए ना, धर्म माना वो प्रण, वो प्रतिज्ञा, वो धारणा। तो वो धारणा जो मेरी है उस पर मैं इतना अटल हूं कि कोई व्यक्ति मेरी वो धारणा मिटा नहीं सकता, ये है स्वमान। और वो स्वमान अगर मेरे अंदर है, इसका मतलब मैं आत्मा, वो शक्ति हूं, मुझे कोई कमजोर नहीं कर सकता, मेरा साथी कौन है। मरने को तैयार होंगे लेकिन अपना स्वमान नहीं छोड़ेंगे। कई बार कई लोग आते हैं ना, समझो जैसे हम कहते हैं धन गया, कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया, कुछ गया, चरित्र गया, सब कुछ गया, तो उसमें कई बातें बताते हैं। समझो कोई आपके सामने आए और बंदूक दिखाए और कहे निकालो सब, ये जो भी गहने पड़े हैं सब निकालो, अब क्या करेंगे, लड़ेंगे, क्या करेंगे, हा? दे देना चाहिए, लो धन गया, कुछ नहीं गया, जान बची, लाखों पाए, कम से कम जान तो बचेगी, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, वापस आ जाएगा। पर स्वास्थ्य गया, कुछ गया, और वो व्यक्ति हमारे चरित्र के पीछे है, मान लीजिए, तो चरित्र के पीछे है तो मैं चरित्र दे दूंगी, क्या करूंगी, दे दूंगी। आजकल तो क्या नई अखबारों में सुनते हैं, बहुत बुरा हाल है, तो क्या करेंगे हम। एक तो बाबा कहते इतनी आपकी ऊंची स्थिति हो जो आपको टच भी न कर सके, टच भी न करे, वो उसको लाइट लाइट दिखाई दे, क्योंकि आपकी योग की स्टेज इतनी ऊंची हो। पर मान लीजिए चरित्र मांग रहा है तो आप नहीं देंगे तो वो आपको मारेगा, अब क्या करेंगे, लड़ेंगे ना कि छोड़ देंगे, चलो जो चाहिए करो भले, क्या करेंगे, क्या करेंगे, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। तो इसलिए कहां पर हमें छोड़ देना है, चलो धन लो, क्योंकि धन गया कोई बड़ी बात नहीं है, पर कम से कम जान से तो नहीं मारेगा, पर चरित्र लेगा तो भले जान से मार ले, लेकिन चरित्र नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने अपना जीवन किसको दिया, भगवान को दिया, और उस समय में अनुभव अगर बाबा कहा, बाबा ऐसा रक्षक बन जाता है जो बात मत पूछो। कई इस पर कहानियां बहुत कुछ आती है कि एक लेडी थी, अकेली जा रही थी सुरंग से, मतलब कहीं था वो जा रही थी, अब भगवान को इतना याद कर रही थी, इतना याद कर रही थी, और अचानक दो व्यक्ति वहां खड़े थे अकेले अंधेरे में, और उस समय वो भगवान को याद करते हुए जा रही थी, और वो दो व्यक्तियों ने उनको देखा। अब वो भगवान को याद करते हुए जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, और वो दो व्यक्ति इसको देखते रह गए, देखते ही रह गए, पर कुछ भी नहीं किया, और फिर वो निकल गई और बच गई और अपने घर चली गई। और फिर अगले दिन न्यूज आई कि एक और कोई औरत थी, वो भी ऐसे ही गई, और वो दो लड़कों ने उसको मतलब रेप किया, जो भी है, वो न्यूज बन गई। तो जब इसने ये पढ़ा, ये सच्ची बात है, जब उसने पढ़ा तो उसने कहा मैं भी तो उसी समय वहां से गुजरी थी, थोड़ा समय पहले, तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं किया, देखा और चले गए। तो आखिर वो फिर वो क्या है, उसने बताया कि मैं भी ऐसे गई थी, ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना, तो मैं भी उसी समय उसके थोड़ा समय पहले गई थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं किया। तो पुलिस ने उनसे पूछा कि आपको वो शक्ल याद है, वो शक्ल याद है, कौन थे वो? तो कहा याद तो है, क्योंकि इसने भी देखा, उसने भी देखा, उन्होंने भी देखा, लेकिन उसको कुछ भी नहीं किया। और जब वो पता किया कौन है और ये सारी मिसाल, तो जब उनसे पूछा गया आपने इनको क्यों नहीं किया, तो कहा कि ये जब जा रही थी इसके साइड में दो बहुत बड़े बड़े आदमी जा रहे थे, समझ गए, वो बहुत बड़े बड़े बहादुर जा रहे थे, तो हम तो डर गए, हम तो डर गए, पर ये अकेली थी, कोई नहीं था साथ में, लेकिन ये सब किसने मदद किया उनको, हाँ? वो तो अज्ञानी थी, लेकिन भगवान को अपना वो नाम जपती जा रही थी, जो जिस जो नाम जपती होगी वो जपती जा रही थी, तो भगवान ने भक्तों को नहीं मदद करेगा, क्यों नहीं करेगा? और सचमुच बिल्कुल उनको वो दिखाई दिए, कहा आपके साथ तो दो इतने बड़े बड़े लोग जा रहे थे, उनका मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। तो इसको कहते हैं कि कैसे सदा बाबा की याद हो तो उसकी मदद मिलती है। तो न बहुत अभिमान रखो और न ही हीनता रखो, डर रखो, पर स्वमान रखो, मेरा साथी कौन है, और उसके आधार पर आपका जो भी कर्म होगा वो तो निरंकारी पने का कर्म होगा, वाणी भी जो होगी, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, कोई आपकी महिमा करे, वो महिमा कभी स्वीकार मत करो, क्योंकि महिमा स्वीकार करेगी तो अभिमान आएगा, उसकी बजाय क्या कहो, कोई महिमा करे तो आपको बाबा नहीं, बाबा की मदद थी, बाबा की मदद थी, तो बाबा की मदद थी तो अभिमान नहीं आएगा, हाँ मैंने किया तो अभिमान आएगा। तो बाबा याद है साथ में, और अगर अपमान करे तो भी बाबा याद है, कोई बात नहीं, अपमान किया मेरा क्या किया, मैं तो बाबा के साथ था, तो अपमान थोड़ी लगेगा। तो अभिमान के वश कोई भी हमारी वाणी न हो। और तीसरा है निर्विकारी। तो किसी ने पूछा निरहंकारी और निर्विकारी को अलग क्यों किया बाबा ने, क्योंकि काम क्रोध लोभ वो अहंकार, अहंकार तो पांच विकारों में भी है, तो निरअहंकारी अलग क्यों किया बाबा ने, क्यों अलग किया? क्योंकि अहंकार काम क्रोध लोभ मोह तो जीतना फिर भी सहज है, लेकिन अहंकार वो अंत तक पीछा नहीं छोड़ता है, पीछा छोड़ता है, रह रह करके फिर आ जाएगा मैं हा? और बाबा कहते मैं को भी मारो। और ये जब तीनों ही स्थिति हमारी होगी तब कर्मातीत स्थिति, संपूर्ण स्थिति, समान स्थिति, बाप समान बन जाएंगे। पर यही बाबा हमसे चाहते हैं। तो ब्रह्मा बाप समान बनने आए हो, ब्रह्मा बाबा ने जो किया वही मुझे करना है। कई कहते हैं ना कैसे हमको कैसे पता चले क्या करें क्या ना करें, तो बाबा कहते हैं उस समय बाबा को सामने लाओ। अगर ब्रह्मा बाबा इस समय होते तो वो क्या करते। मेरे से किसी ने पूछा, बड़े कई प्रश्न पूछते हैं लोग, एक किसी ने पूछा बाबा को कभी गुस्सा आता था, बाबा को कभी गुस्सा आता था? हाँ भाई शीलबेन, बाबा को कभी गुस्सा आता था? तो हमने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा अगर कोई भी कुछ भी गलती करे तो बाबा कहते बच्चे देखो, बच्चे हमेशा बाबा बच्चे इतना प्यार से समझाते थे। वो बच्चा तो पिघल जाता था, गुस्सा तो बहुत दूर की बात है, भले वो पहले गुस्सा करेगा। बाबा के आगे आते थे, क्या क्या बोलते थे। हम दादी जी को भी देखा, बड़ी दादी जी, दादी के आगे आकर के इतना आर्ग्यूमेंट करते थे, बात मत पूछो। और दादी उस समय चुप, एक शब्द नहीं बोलती थी, एक शब्द नहीं, क्योंकि वो अगर उस समय बोलेगी तो कौन सुनेगा, वो सुनेगा थोड़े, गुस्से में है उस समय को सुनेगा, वो भी गुस्से में हम भी गुस्सा कर ले तो सुनेगा वो, उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा हम क्या बोल रहे, वो अपना ही सोच रहा है। तो उस समय क्या करना चाहिए, चुप बस, और चुप कह करके शांत हो जाओ। एक चुप सौ सुख, वो बोल बोल करके कहाँ जाएगा, आखिर क्या होगा है? तो बाबा के आगे, दादी के आगे हमारे क्या नहीं आया होगा। ऐसे नहीं कि दादी है माना उनको हर एक रिस्पेक्ट देता होगा, अभिमानी व्यक्ति क्या करेगा। वो तो रावण तो राम के आगे भी तो कोई कम थोड़ा, कहाँ राम, कहाँ उसकी मर्यादा, कहाँ उसकी श्रेष्ठ स्थिति, पर रावण ने थोड़ी उसको समझा, वो तो अपने अभिमान में ही था। तो देखो इसलिए बाबा कहते हैं यही हमारा पुरुषार्थ हो। अब कौन कितना करता है, बाबा कभी कैसे अंत तक पुरुषार्थ ही करते रहे ना। कई बार कई बच्चे पूछते हैं बाबा के आगे माया आती थी, बाबा मुरलियों में कहते हैं बच्चे पहले तो माया आएगी ना, तूफान आएगा तो इंजन को लगेगा, इंजन को लगेगा, डब्बों को तो बाद में लगता है। तो इसका मतलब ब्रह्मा बाबा को माया आती होगी। लेकिन ब्रह्मा बाबा बच्चों को समझाने के लिए ये मिसाल देते थे, बच्चे घबराओ मत, बच्चे डरो मत, हाँ ये आएंगे, ये माया आएगी, पर बच्चे कर्म में नहीं लाना, कर्म में नहीं लाना। लेकिन अभी अव्यक्त बाप दादा तो हमको बहुत ऊंचा ले गए साकार में, फिर भी बाबा कहते थे कर्म में नहीं लाना। लेकिन अव्यक्त बाप दादा क्या कहते हैं, कर्म तो क्या, संकल्प तो क्या, और आगे स्वप्न में भी ना आए। क्यों स्वप्न और सूक्ष्म है, क्योंकि स्वप्न हमारे वश में नहीं है, संकल्प तो फिर भी वश में है, पता चलता है ये संकल्प हम कर रहे हैं, पर स्वप्न तो आपके वश में नहीं है। पर वो स्वप्न का आधार भी क्या है, अपने आप ऐसे ही स्वप्न नहीं आते हैं। स्वप्न कैसे आते हैं, स्वप्न का आधार भी हमारा ही कोई न कोई पुराना संस्कार है। जो संस्कार इमर्ज होता है वो स्वप्न के अंदर ही आता है, इसलिए उस तक भी न आए, इतना अपने आप में परिवर्तन लाना है। और हम ब्रह्मा बाबा को देखते थे कैसे पुरुषार्थ करते हैं, सवेरे सवेरे कैसे उठते, उठ करके मम्मा मम्मा का पुरुषार्थ, वंडरफुल। हम दादियों का पुरुषार्थ देखते हैं, दादी कैसे एकदम न्यारी हो जाती है, दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि। तो ये दादियों को देख करके हम कितना सीखे हैं सचमुच। अभी हमको, हमने उनको फॉलो किया, अभी हमको आपको फिर और फॉलो करेंगे, बहुत फॉलो करेंगे। अभी तो कितनी सेवा बाकी बची हुई है वो आपको ही देखेंगे। आप लोग 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से आपने कितना पाया होगा, हम आपसे पा रहे हैं। तो सचमुच हम लोगों को भी लगता है हमने कितना पाया बाबा से, ब्रह्मा बाबा से, मम्मा से। क्योंकि मैं भी 1960 में ज्ञान में आई हूँ, तो 12 साल की थी, बाबा की गोद में ही मैंने अलौकिक जन्म लिया। बाबा ने मुझे उसी समय वरदान दे दिया। बाबा की गोद में गई, माँ के साथ आई थी, 10-11 साल की थी, और बाबा ने उसी समय वरदान दे दिया। बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई, बस हो गई, हो गया जन्म मेरा। बाबा के पास गई माना बाबा की हो गई। आज बाबा ने कहा ना, एडॉप्ट होते हैं तो जिसके पास एडॉप्ट होते हैं उनको वही याद रहता है, जो पिछला है वो भूल जाता है। तो यही है, बस यही अलौकिक जीवन, अलौकिक जन्म, अलौकिक परिवार। तो बस ये अनुभव अगर सचमुच हम सब करें तो क्या होगा। बाबा को दादियों ने फॉलो किया, पर बाबा ने किसको फॉलो किया? दादियां तो कहती है ब्रह्मा बाबा मम्मा को हमने फॉलो किया, और हम कहेंगे हमने, चलो ब्रह्मा बाबा मम्मा को जिसने नहीं देखा तो दादियों को तो देखा है, तो दादियों को फॉलो किया हम ये कहेंगे मानो। परंतु ब्रह्मा बाबा ने किसको देखा है? ब्रह्मा बाबा ने तो बस जो शिव बाबा ने कहा तुरंत किया। मम्मा भी ऐसे, इसलिए तो मम्मा बनी। तो हम ये न कहें कि हमने बाबा मम्मा को नहीं देखा, दादियों को नहीं देखा। बाबा के जो महावाक्य हैं वही देन है, वही मुरली हमारी श्रीमत है। उस पर हम जितना चल सकेंगे उतना ही हम अपना कल्याण करेंगे। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।
दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जोरदार ताली बजा के दीदी जी का सब धन्यवाद करेंगे। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति सचमुच आपके प्रैक्टिकल जीवन में भी देखने में आती है, जो आज आपने क्लास में अपने अनुभव बताए, और बाबा दादी मम्मा के साथ के भी अनुभवों से हमें लाभान्वित किया। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमें भरपूर किया है। परसों दीदी जी विशेष विदेश जा रहे हैं, और भी अनेक आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान से लाभान्वित करने, अपने अनुभवों से सबको सजाने के लिए। तो हम सबकी शुभकामनाएं दीदी जी के साथ में है। थैंक यू दीदी।